बंबई में एक लड़के की सगाई हो गई तो उसने अपने मित्र से दोस्त से कहा कि भाई मेरी सगाई तो होगी लेकिन मैं शादी नहीं करूंगा। दोस्त ने पूछा भाई क्यों? बोलो रहने के लिए यहाँ मकान नहीं मिलता, क्या करूं शादी करके। तो मित्र ने सलाह कर दी कि तुम शादी कर लो, शादी करके अपने ससुर के घर पे डेरा डाल दो। तो उस लड़के ने कहा क्या करूं, मेरी भी पहले यही इच्छा थी लेकिन मेरे ससुर तो खुद अपने ससुर के घर पे डेरा डाले। ये बंबई की जिंदगी है। लीजिए, बंबई की जिंदगी के साथ साथ अगर दिल्ली की जिंदगी हम देखें, दिल्ली बढ़िया है, राजधानी है, दिल्ली के दिल। कभी बार ओम प्रकाश आदित्य आपके सामने आ रहे हैं, हास्य और व्यंग के श्रेष्ठ कवि जिन्हें कहा जाए, उत्कृष्ट कवि कहा जाए, ऐसे भाई ओम प्रकाश आदित्य। मूलतः है वो हरियाणा के हैं लेकिन आजकल दिल्ली में हैं, दिल्ली में रहते हैं और देश के अनेक कवि सम्मेलनों में भाग लेते हैं। जोर से एक बार ओम प्रकाश आदित्य।
पहले कुछ छंद आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं मैं, देखें आप व्यंग के, कि एक स्वर्गीय नेता नरक में गया। आप जानते हैं हमारे यहाँ नरक भी है स्वर्ग भी है, लेकिन आज तक हमारे देश में किसी आदमी का नरक ही नहीं लिखा गया। चाहे आदमी कितना भी भ्रष्ट रहा हो, कीड़े पर का मरा हो, लेकिन लिखा जाएगा स्वर्गीय। और जहां तक हमारे देश के नेताओं का प्रश्न है, वो सब वहीं जाएंगे नरक में ही, लेकिन लिखा उनके आगे स्वर्गीय जाएगा। एक स्वर्गीय नेता नरक में गए, यमराज ने कहा कि चुपचाप बैठ जाइए। एक स्वर्गीय नेता नरक में गए, यमराज ने कहा कि चुपचाप बैठ जाइए। अपने मुनिम चित्रगुप्त को बुला के बोले, इनका हिसाब अति शीघ्र समझाइए। चित्रगुप्त ने कहा कि यमराज महाराज, इनके हिसाब में ना शीघ्रता दिखाइए। 5 साल में जो इन्होंने है कारनामे किए, उन्हें बतलाने को 50 साल चाहिए। और इसी गोथ का एक और कविता देखें आप। आगरे का धोबी एक राजधानी दिल्ली आया, आगरे का धोबी एक राजधानी दिल्ली आया। दिल्ली वालों से यूं बोला, दुखी हो के मन में, गांव गांव भटका में, नगर नगर गया वन में, मिला ना मुझे मिला उपवन में। किले पर चढ़ कर ढेंचू ढेंचू बोलता था, बड़ा होनहार दिखता था बचपन में। पिछले चुनाव से ओ मेरा गधाला पता है, ढूंढने आया हूँ उसे संसद भवन में। पिछले चुनाव से ओ मेरा गधाला पता है, ढूंढने आया हूँ उसे। और मेरे मित्र में एक कंपटीशन है, प्रतियोगिता है, कि हम ऐसी वस्तु खोजेंगे जो संसार में मिल नहीं सकती। असंभव वस्तुएं खोजने निकलते हैं और मेरा मित्र इस कंपटीशन में जीत जाता है। देखें हम कौन कौन सी असंभव वस्तु खोजने निकलते हैं। मरुथल में गया मैं देवदारू ढूंढने को, मेरा मित्र पानी पर चित्र ढूंढने चला। मरुथल में गया मैं देवदारू ढूंढने को, मेरा मित्र पानी पर चित्र ढूंढने चला। कंटक में खोजता रहा मैं एक कोपल को, मेरा मित्र संकट में मित्र ढूंढने चला। मेरा मित्र संकट में मित्र ढूंढने चला। फूल तोड़ने चढ़ा मैं गुलर के पेड़ पर, मेरा मित्र धतूरे में इत्र ढूंढने चला। फूल तोड़ने चढ़ा मैं गुलर के पेड़ पर, मेरा मित्र धतूरे में इत्र ढूंढने चला। वेश्या के नयन में मैं लाज ढूंढता ही रहा, मेरा मित्र मंत्री में चरित्र ढूंढने चला। मेरा मित्र और मंत्रियों की बात आ गई तो एक बहुत, मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूँ क्योंकि दिल्ली में रहता हूँ इसलिए कह रहा हूँ। हाथी पर बैठकर राजा चलते थे, कभी छाती पर बैठी अब रानी चल रही है। हाथी पर बैठकर राजा चलते थे, कभी छाती पर बैठी अब रानी चल रही है। सारा देश एक परिवार में सिमट गया, परिवार में भी आना कानी चल रही है। परिवार में भी आना कानी चल रही है। बुढ़ापा बड़ों बड़ों को बांध के नचा रहा है, संकेतों पे किसी के जवानी चल रही है। राजधानी दिल्ली से लंबी लखनऊ तक, सास और बहू की कहानी चल रही है। सास और बहू की कहानी चल रही है। और एक बड़ा प्रयत्न किया जा रहा है कि राजीव जी को आगे लाया जाए, जबकि हम देश के लोग समझ चुके हैं कि वो इस काबिल नहीं है, फिर भी क्यों कोशिश की जा रही है समझ में नहीं आ रहा है। मैंने एक सलाह दी उनको, अपनी आदरणीय को, जिसे पतवार का न धार का पता हो कुछ उसे नाव पर यूं सवार मत कीजिए। जिसे पतवार का न धार का पता हो कुछ उसे नाव पर यूं सवार मत कीजिए। चाकू तो रहेगा चाकू बार बार धार दे के खींच खींच कर तलवार मत कीजिए। खींच खींच कर तलवार मत कीजिए। सीधे साधे बालक से वायुयान चालक से देश चलवाने का विचार मत कीजिए। सीधे साधे बालक से वायुयान चालक से देश चलवाने का विचार मत कीजिए। चांदी था या सोना था ये हो चुका जो होना था ये मार मार कर होनहार मत कीजिए। मार मार कर हमारे यहाँ दिल्ली में आजकल सबसे बड़ी जो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है एशियाड 82 एशियाड के खेल हो रहे हैं। हाँ सुना रहा हूँ भाई साहब, एशियाड 82 हमारे यहाँ खेल हो रहे हैं उस पर अरबों रुपया खर्च किया गया है। इस संबंध में एक कविता आपको सुनाना चाह रहा हूँ। देखें आप एशियाड 82 के बारे में, दिल्ली में बहुत पैसा खर्च किया गया है। देशभक्त ठेकेदार बोला इंजीनियर से अरबों लुटा के हम यो ना सोना चाहिए। देशभक्त ठेकेदार बोला इंजीनियर से अरबों लुटा के हम यो ना सोना चाहिए। अपने ही आंगन के बीच पराजित होके खेलों में ना नाम देश का डूबोना चाहिए। जीतेंगे पदक एशियाड में पराए देश मित्र हमें भी ना अवसर खोना चाहिए। देखे कौन पदक देखे कौन स्वर्ण पदक ले हमारे सिवा भ्रष्टाचार का भी एक खेल होना चाहिए। भ्रष्टाचार का भी एक खेल होना चाहिए। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगर ये खेल शुरू हो जाए तो हमारे देश के सिवाय को दूसरा देश जीत नहीं सकता इस कंपटीशन में। इसलिए कहा मनोज जी मुझे एक कविता की आज्ञा दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि कविता बहुत बार आपकी सुनी होगी, लेकिन क्योंकि मनोज जी कह रहे हैं उनकी आज्ञा में टाल नहीं सकता। दूल्हे की घोड़ी। हमारे यहाँ जब किसी आदमी का दुर्भाग्य या सौभाग्य से विवाह होता है, एक बड़ी पुरानी परंपरा है, दूल्हे को घोड़ी पर बिठाकर वधू के घर तक पहुंचाया जाता है, उसकी सवारी निकाली जाती है धूमधाम से। और जब कोई दूल्हा घोड़ी पर बैठा होता है, आप ध्यान से देखें, चाहे वो कितना भी कमजोर हो, दुर्बल हो, मरियल हो, मन से कायर हो, लेकिन उस वक्त घोड़ी पर ऐसे अकड़ कर बैठता है जैसे महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध करने जा रहे हैं। ऐसे एक दूल्हे के साथ दुर्घटना घटती है। आप कल्पना करें, दूल्हा घोड़ी पर है, पीछे बारात है, बैंड बाजा बज रहा है, आतिशबाजियां छूट रही हैं, उस बेचारे के साथ क्या होता है। दूल्हे की घोड़ी बड़े छोटे छंद में छोटी सी रचना है। नया नया दूल्हा था, नई नई घोड़ी थी, दोनों का पहला तजुर्बा जिंदगी में। घोड़ी भी संयोग से इस में पहली बार लाई जा रही है। नया नया दूल्हा था, नई नई घोड़ी थी, बाजे दुर्पत्ते थे, छत चमन डुलते थे, बाराती आपस में मिलते थे, जुलते थे, करते थे रंगलियां, लोग समतलते थे, दूल्हे के संग संग दर्शक भी चलते थे। घोड़ी चौकन्नी थी, घोड़ी चौकन्नी थी, दाएं लख बाएं लख गर्दन हिलाती थी, रुक रुक कर मुड़ती थी, मुड़ मुड़ कर रुकती थी, आगे से उठती थी, पीछे से झुकती थी, आगे से उठती थी, पीछे से झुकती थी, युद्धों के योग थी, शादी में दरक थी, वकीलों के तर्कों से ज्यादा सतर्क थी, वकीलों के तर्कों से ज्यादा सतर्क थी। दूल्हा भी घोड़ी की गतिविधियां देखकर काफी चौकन्ना था, दूल्हा भी घोड़ी की गतिविधियां देखकर काफी चौकन्ना था। उसका इस यात्रा में दुल्हन से भी ज्यादा घोड़ी पर ध्यान था, उसका इस यात्रा में दुल्हन से भी ज्यादा घोड़ी पर ध्यान था। गर्दन पर आंखें थी, टापों पर कान था, मन था उतरने का कह नहीं सकता था, मन था उतरने का कह नहीं सकता था, अपनी दुर्बलता औरों के सामने सह नहीं सकता था। तभी वहां दूल्हे के स्वागत में बम्बे गोले सा फूट गया, इसने आतिशबाजी चला दी पीछे से। तभी वहां दूल्हे के स्वागत में बम्बे गोले सा फूट गया, सुनकर धमाके को, भीषण पटाखे को, चौकन्नी घोड़ी का धीरे जी छूट गया, चौकन्नी घोड़ी का धीरे जी छूट गया। गर्दन को लटका दे, पांव को चटका दे, सरपटियों दौड़ चली, बाराती छैलों को, राहों को, गैलों को पीछे छोड़ चली। दूल्हा भी चटपट से दुल्हन को भूलकर घोड़ी पर झूलकर कंधे के बालों से लंबे आयाओं से कसकर लिपट गया, काठी तो गिर पड़ी पीठ से चिपट गया, काठी तो गिर पड़ी पीठ से चिपट गया। बाराती भगदड़ में, भीड़ में, कोलाहल में तितर बितर हो गए। घोड़ी चढ़े दूल्हे को देखने सड़कों पर, गलियों चौराहों में इधर उधर खो गए। कईयों ने देखा भी घोड़ी चढ़े दूल्हे को सड़कों पर भागते, आवाजें दी कितनी, रुक जाओ रुक जाओ, पर दूल्हा क्या बोले वो घोड़ी थोड़े सा सुनकर जो रुक जाता, पर दूल्हा क्या बोले वो घोड़ी थोड़े सा सुनकर जो रुक जाता। घोड़ी चल चित्र सी, घोड़ी दौड़ रही है, गति देखे आप, घोड़ी चल चित्र सी, दुखे चरित्र सी, कुल के कुपात्र सी, आवारा छात्र सी, पथ पृष योगी सी, कामातुर भोगी सी, मन की उमंग सी, उत्सव तरंग सी, अतुकांत कविता सी और छंद भंग सी, अतुकांत कविता सी और छंद भंग सी, सरपटियों दौड़ी थी, लगता था अग जग में घोड़ी ही घोड़ी थी। बेचारा दूल्हा भी कई बार दुल्हन के छगे हुए द्वार से, तोरण से, माला से, ओबंधन वार से, दो गज की दूरी से होकर निकल गया, पर नहीं उतर सका। दो गज की दूरी से होकर निकल गया, पर नहीं उतर सका। स्त्रियां बोल उठी, वर्दी उतर पड़ो, स्त्रियां बोल उठी, वर्दी उतर पड़ो, पर वर्दी व्यवस्थे कैसे उतरते, उतरते तो गिरते, गिरते तो मरते, चढ़े नहीं रहते तो और क्या करते। पर वर्दी व्यवस्थे कैसे उतरते, उतरते तो गिरते, गिरते तो मरते, चढ़े नहीं रहते तो और क्या करते। दूल्हा ये सोचे था रुक जाए तो उतरूं, घोड़ी ये सोचे थी ये उतरे तो रुकूं। दूल्हा ये सोचे था रुक जाए तो उतरूं, घोड़ी ये सोचे थी ये उतरे तो रुकूं। वर को घोड़ी का डर, घोड़ी को वर का डर, डर को डर पकड़े था, ये उसको जकड़े थी वो उसको जकड़े।
सही बात भाई आदित्य जी कहना चाहते हैं। आदित्य की भी प्रार्थना है, मेरी भी कामना है, आपकी भी शायद इच्छा होगी। देश के कवि सम्मेलनों के ऐसे कर्णधार, पंजाब सरकार ने जिन्हें राज कवि की उपाधि से विभूषित किया, दिल्ली के रसिक श्रोताओं ने जिन्हें जन कवि की उपाधि दी, और बंबई के श्रोताओं ने जिनको सुनकर राष्ट्रीय कवि के रूप में उद्घोषित किया, ऐसे देश के हिंदी, उर्दू और पंजाबी तीनों भाषाओं में समान रूप से लिखने वाले राजकवि इंद्रजीत सिंह तुलसी, पद्मश्री इंद्रजीत सिंह तुलसी। और अगर मैं अलग बात कहना चाहूं तो दोस्तों, जिन्होंने देश के जितने भी राष्ट्रपति हुए, प्रधानमंत्री हुए, सबके सामने अपनी रचनाओं के माध्यम से अपनी विजय पताका फहराने वाले, देश में लड़ते हुए जवानों को अपनी कविता के माध्यम से जोश दिलाने वाले राज कवि इंद्रजीत सिंह तुलसी मंच पर हैं। मैं निवेदन करूंगा आपसे, पंजाबी के महाकवि हैं, सोम ठाकुर का कहना है, लेकिन हिंदी में जो समान रूप से लिखने वाले हैं, ऐसे आदरणीय तुलसी जी, जिन्होंने एक बार कहा कि वक्त के सांचे में अपनी जिंदगी को ढालकर मुस्कुराओ मौत की आंखों में आंखें डालकर, मुस्कुराओ मौत की आंखों में आंखें डालकर। दोस्तों, ऐसे आदरणीय तुलसी जी आ रहे हैं। मेरा ये कहना है कि जिनको अपने बीच में पाकर हिंदी भाषा हुलसी कविता भी सुनाने आते इंद्रजीत सिंह तुलसी।
माननीय अध्यक्ष महोदय व उपस्थित बहनों और भाइयों, आज का मुबारक पर्व विजय दशमी का पर्व है, और रावण का पुतला जलाया गया। हुल्लड़ जी ने भी संकेत किया था, मैं भी एक बात कुछ लिख कर लाया हूँ, इसी ढंग की सुनिएगा।
रावण का पुतला जलाने से पहले, हे रावण का पुतला जलाने से पहले, मन का ये रावण जलाओ साथियों, फिर ये विजयदशमी मनाओ साथियों, फिर ये विजयदशमी मनाओ साथियों। हे रावण का पुतला जलाने से पहले, हे रावण का पुतला जलाने से पहले, मन का ये रावण जलाओ साथियों, फिर ये विजयदशमी मनाओ साथियों। हे महलों में खूब हुई दीपों की माला, हे महलों में खूब हुई दीपों की माला, हे महलों में खूब हुई दीपों की माला, कुटिया में दीपक जलाओ साथियों,
फिर विजय दशमी मनाओ साथियों, फिर ये विजय दशमी मनाओ साथियों। अरे देखो रे देखो राम की लीला कैसा कलयुग लागा, देखो रे देखो राम की लीला कैसा कलयुग लागा। अब सीता को कौन बचाए घर घर रावण जागा, अब सीता को कौन बचाए घर घर रावण जागा। हे लक्ष्मण की रेखा, हे लक्ष्मण की रेखा से पार हुई सीता, हे लक्ष्मण की रेखा से पार हुई सीता, अरे सीता को तुम ही बचाओ साथियों, फिर ये विजय दशमी मनाओ साथियों, ओ ताली तो जरा तुम बजाओ साथियों, मर जाओ साथियों। अरे तुमको पता नहीं शायर को दाद कैसे देनी है, बजाओ ताली जोर से, पता लगे तुमको क्या होता है। शायर इस तरह से गर्म नहीं होगा और ना ही मुशायरा गर्म होगा, ना कवि सम्मेलन गर्म होगा। हम एक नई कविता आपके लिए लिख के लाए हैं, तो जरा बात कर रहे हैं, बात में फिर बात होनी चाहिए, कहने वाले की और सुनने वाले की। सुनिए, देखो रे देखो, अरे देखो रे राम की लीला कैसा कलयुग लागा, अब सिया को कौन बचाए घर घर रावण जागा। हे लक्ष्मण की रेखा से पार हुई सीता, लक्ष्मण की रेखा से पार हुई सीता, सीता को तुम ही बचाओ साथियों, रावण की लंका जलाओ साथियों, तुम ही श्री राम बन जाओ साथियों, तुम ही श्री राम बन जाओ साथियों। मुलाजा करें, अरे आज द्रौपद ने खुद अपने हाथों चीर उतारा, आज द्रौपद ने खुद अपने हाथों चीर उतारा, आज द्रौपद ने खुद अपने हाथों चीर उतारा, अब खतरे में पड़ा दुशासन आओ कृष्ण मुरारा, अब खतरे में पड़ा दुशासन आओ कृष्ण मुरारा। हे तन भी है नंगा और मन भी है नंगा, हो तन भी है नंगा और मन भी है नंगा, महफिल में ऐसे ना आओ साथियों, घर को ना कोठे बनाओ साथियों, घर को ना कोठे बनाओ साथियों, आओ विजय दशमी मनाओ साथियों। हे रावण का पुतला जलाने से पहले, हे रावण का पुतला जलाने से पहले, मन का ये रावण जलाओ साथियों, फिर ये विजय दशमी मनाओ साथियों। दोस्तों शेर है, मुलाजा करिए ख्याल, अरे गिरा हुआ जो पैसा देखें उसको लोग उठाएं, गिरा हुआ जो पैसा देखें उसको लोग उठाएं, गिरा हुआ इंसान जो देखें उसके पास न जाएं, गिरा हुआ इंसान जो देखें उसके पास न जाएं। हे लोगों ने बनाया देखो नोटों को कन्हैया, अरे लोगों ने बनाया देखो नोटों को कन्हैया, असली कन्हैये को बुलाओ साथियों, फिर ये विजय दशमी मनाओ साथियों, फिर ये विजय दशमी मनाओ साथियों। अरे गिरा हुआ आदमी उठाओ साथियों, गिरा हुआ आदमी उठाओ साथियों, अरे जितने आज सियासी दल हैं लंबी तान के सोए, जितने आज सियासी दल हैं लंबी तान के सोए, अरे ये भी ऐसे वो भी ऐसे जनता किसको रोए, अरे वैश्या के जैसी हैं बिकाऊ आज कुर्सियां, अरे वैश्या के जैसी हैं बिकाऊ आज कुर्सियां, कुर्सी पे फूल ना चढ़ाओ साथियों, कुर्सी से देश को बचाओ साथियों, कुर्सी से देश को बचाओ साथियों, फिर ये विजय दशमी मनाओ साथियों। देखिए राम और रावण की बात चल रही थी, सुनिएगा, भाषा से भाषा टकराए वही आज का रावण, भाषा से भाषा टकराए वही आज का रावण, अरे फिरके से फिरका लड़वाए वही आज का रावण। हे नफरत की लंका जलाने से पहले, अरे नफरत की लंका जलाने से पहले,
तुम ही हनुमान बन जाओ साथियो, फिर ये विजय दशमी मनाओ साथियो, आओ मेरे देश को बचाओ साथियो। अरे जैसे टूटे तारे छोड़े पीछे कई लकीरें, आओ अपने पीछे छोड़े हम भी कुछ तस्वीरें। हे शिव जी की जब तक खुले ना समाधि, अरे शिव जी की जब तक खुले ना समाधि, माथे पे चंदा उगाओ साथियो, अरे दिल का ही डमरू बजाओ साथियो, दिल का ही डमरू बजाओ साथियो, आओ विजय दशमी मनाओ साथियो। तो कोयल बोले कुहू कुहू और कौआ काएं काएं, कौआ काएं काएं, कोयल बोले कुहू कुहू और कौआ काएं काएं, और दोनों में क्या फर्क है यारो, पता चले जब गाएं। हे हंसों की चाल देखो चलते हैं कौए, अरे हंसों की चाल चलो चलते हैं कौए, कौओं को हंस न बनाओ साथियो, अरे हंसों को मोती चुगाओ साथियो, हंसों को मोती चुगाओ साथियो, फिर ये विजय दशमी मनाओ साथियो, फिर ये विजय दशमी मनाओ साथियो। अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भारत के वाली, एक डाल के फूल हैं हम सब एक गुलशन एक माली। हे बेशक खिजाओं ने किए लाख हमले, फिर भी बहारों को लाओ साथियो, कांटों में भी कलियां खिलाओ साथियो, कांटों में भी कलियां खिलाओ साथियो। तेरे घर अंतर्चन है, तेरे घर शब रात की जगमग, मेरे घर दीवाली, तेरे घर शब रात की जगमग, मेरे घर दीवाली। अरे हमको बख्शे नई रोशनी रात चिरागों वाली, हमको बख्शे नई रोशनी रात चिरागों वाली। हे लो यारो ईदों दुसहरों के दिन है, आओ यारो ईदों दुसहरों के दिन है, दुगनी मोहब्बत बढ़ाओ साथियो, तुलसी के साथ साथ गाओ साथियो, आओ विजय दशमी मनाओ साथियो, आओ विजय दशमी मनाओ साथियो। आओ अमन का पुलका पुतला जलाने से पहले, मन का ये रावण जलाओ साथियो, आओ विजय दशमी मनाओ साथियो।
लोगों के विशेष अनुरोध पर फिर मैं एक बार प्रार्थना कर रहा हूं श्री शरद जोशी से। शरद जोशी एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं जिन्होंने साहित्य में अनेक अभिवृद्धि की है और कई प्रकार की रचनाएं हास्य व्यंग की लिखकर एक कीर्तिमान स्थापित किया है। मुझे कभी कभी याद आता है शरद जी के लिए, शरद जी ने किसी व्यक्ति को देखकर एक बार कहा था, मैंने आपको कहीं देखा है। दूसरे व्यक्ति ने कहा, साहब मैंने तो आपको नहीं देखा। शरद जी फौरन बोले कि शायद मैंने आपको कश्मीर में देखा है। दूसरे व्यक्ति ने कहा, कश्मीर में तो मैं आज तक नहीं गया। शरद जी बोले कि गया तो मैं भी नहीं। उस व्यक्ति ने कहा, फिर शरद जी ने फौरन कहा कि फिर क्या और ही कोई दो आदमी मिले होंगे।
आप जानते हैं, हम कभी किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं अपना छोटा मोटा काम करवाने के लिए, तो ऐसा लगता है कि जैसे बियाबान जंगल में आ गए, यहां कोई भी हमारा नहीं है। कभी कोई पहचान वाला मिल जाता है तो बड़ी खुशी होती है कि चलिए अब काम हो जाएगा। तो ऐसी एक स्थिति है, मैं सरकारी दफ्तर में हूं और मुझे अपना कुछ काम करना है और मेरी एक बातचीत हो रही है। रचना का शीर्षक है आदमी की पहचान। मैं उसके सामने खड़ा था, जिंदा खड़ा था, मगर उसने मेरे अस्तित्व से साफ इनकार कर दिया। वह यह मानने को ही तैयार नहीं था कि मैं हूं, और जब तक वह मानता नहीं मुझे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रुपए नहीं मिल सकते थे। मैं आपके सामने साक्षात खड़ा हूं, प्रमाण क्या है, उसने पूछा मेरे खड़े होने का। अजी आप हैं या मैं कैसे जानूं, मुझे सबूत चाहिए। यार मैं जिंदा हूं यह बात कोई अफवाह तो नहीं है? यह मैं कुछ नहीं जानता, मुझे सबूत चाहिए। आप भारतीय संस्कृति पर भरोसा करते हैं? मैंने पूछा। कर सकता हूं, बशर्ते उससे दफ्तर के काम में बाधा नहीं आए। तो ठीक है, मैं घर जाकर अपनी पत्नी को ले आता हूं। क्यों? आप उसके माथे पर बिंदी देखिए, मांग में सिंदूर लगा है। मेरे पास मेरे जिंदा होने का इससे बढ़कर कोई प्रमाण नहीं। कमाल है। किस बात का? आप भी पढ़े लिखे होकर ऐसी बातें कर रहे हैं। भैया भारतीय संस्कृति में यही प्रमाण होता है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, आप पति हैं? जी हां। वह आपकी पत्नी है? और क्या क्या सबूत इस बात का? अरे वह मेरी एकमात्र पत्नी है और मैं उसका एकमात्र पति हूं। भाई हम शरीफ लोग हैं। ऐसा? तो जाओ अपने एरिया के सब इंस्पेक्टर पुलिस से लिखवा लाओ कि हम शरीफ हैं। अरे आप मेरी कॉलोनी में चलकर किसी से पूछ लीजिए। क्यों? आपके बड़े दादा हैं कॉलोनी के? नहीं। फिर कॉलोनी का रोप किसे दे रहे हैं? अरे मैं सरकारी काम करूंगा कि मोहल्ले में पूछने जाऊंगा? मुझे हर सबूत टेबल पर होना, इस टेबल पर। देखो भाई, रुपयों की मंजूरी मेरे नाम पर हुई है। जो रुपया दिया जाना है मुझे दिया जाना है। अब आपकी इंसानियत इसी में है कि आप, यार आप इंसानियत की बातें करते हैं, मैं ये सरकारी दफ्तर है। मैं चुप हो गया। फिर मैं उसे नए सिरे से समझाने लगा। देखो दोस्त, तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो। तुम बीसियों बार मेरे घर पर आ चुके हो, चाय पी चुके हो। पियोगे यार, हमारी तो जिंदगी दूसरे की चाय पीते बीती है। मगर मैं आपको नहीं पहचानता। क्यों? मेरा फर्ज है भाई, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूं। इस कुर्सी पर बैठने के बाद मैं अपने बाप को भी नहीं पहचानता। मैं पराजित हो गया। यह बहस अनंत काल तक चल सकती थी और इसका समापन होना कठिन था। सरकारी दफ्तरों में जब मैंने कोशिश की है, मैं इसी तरह हारा हूं। खैर, कोशिश करना मेरा फर्ज था। मैंने धीरे से पूछा, आप मुझे पहचानने का क्या लेंगे? 25 रुपया, हमारा यही रेट है। ज्यादा है, इससे कम में हम किसी को नहीं पहचानते। एक जमाना था आप 2 रुपए में पहचानते थे, मैंने कहा। आह, वो भी क्या दिन थे। वो एकाएक भावुक हो गया। सस्ती का जमाना था भाई, सरकारी दफ्तरों में इंसान की पहचान 1-2 रुपए में हो जाया करती थी। उस जमाने में आप भी इस विभाग से 100-500 से ज्यादा नहीं ले पाते थे। आजकल आप 1000-2000 ड्रॉ कर लेते हैं और मैं 25 से कम में नहीं पहचानता। भगवान करे आप ऐसी प्रगति करें, आप लाखों ड्रॉ करें और मैं आपको हजारों से पहचानूं। मैं सुन रहा था, इस देश में जो व्यक्ति एक दर्शन अख्तियार कर लेता है, एक जीवन दृष्टि अपना लेता है, वह सहज में नहीं टिकता। मैंने जेब में हाथ डाला, 25 रुपए निकाले और उसकी तरफ बढ़ाए। उसने रुपए जेब में रखे, कैश बॉक्स खोला और 1000 रुपए निकाल कर गिनने लगा। गिनते हुए बोला, और बाल बच्चे सब मजे में? भाभी कैसी हैं? बहुत दिनों से घर आना नहीं हुआ।